आप जो बातें काम की, जो ना कहूंगी तो फिर बात का फायदा नहीं। वो ये कि नंबर एक, आप अल्लाह ताला की रजा पे राजी रहे, जो आपके नसीब में था मिल गया, जो आपका नहीं है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। जो तकलीफ आपको मिलनी है ना, मिल के रहेगी। आपके पेरेंट्स खाना काबा के गिलाफ को पकड़ के आपके लिए दुआ करें ना कि अल्लाह मेरे बच्चे को कोई दुख ना देना, तकलीफ ना देना, फिर भी आएगी। जब कोई दुख मिलना होता है, वो बच्चे माँ के गोद से निकल कर जाकर गिर जाते हैं, और अल्लाह ने बचाना है तो मूसा को दरिया की लहरों से भी बचा लिया। अपना फर्म बिलीफ रखें कि मेरा अल्लाह जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, पहली बात। फिर दूसरी बात देखिए कि आपको कुछ रिश्ते इरीटेट करते हैं, चलिए फी जमाना शौहर नहीं पसंद आपको, हस्बैंड के आते नहीं पसंद, घुल रहे हैं, यही मेरे नसीब में था, यही मिलने थे, किसी को बच्चे नहीं पसंद, निकम्मे, ये हो गया, बेटे क्यों नहीं, बेटी क्यों नहीं। अच्छा, अब आप शौहर की बात करते हैं कि अगर किसी को अपना हस्बैंड नहीं पसंद, और सेम थिंग ब्रदर्स के साथ हो सकती है, किसी को अपनी वाइफ नहीं पसंद, आपने अगर वो सारे मैयर्स लिए जो अल्लाह के नबी ने सिखाए किसी डिसीजन को बनाने से पहले, हदीस में आता है कि जब तुम किसी औरत से शादी करो या औरत मर्द से करे तो सबसे पहले दीन को देखो, फिर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तुम्हें फैमिली अच्छी मिल जाए, दौलत मिल जाए, ब्यूटी मिल जाए, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन दीन को देख लो, और अगर दीन वाला मिल जाए तो रिश्ता कर दो। अब एक मेयार है, फिर आपने कहा कि मशवरा कर लो, फिर आपने कहा इस्तखारा कर लो। अब आपने अगर इस्तखारा करके कोई काम कर लिया, हर चीज़ अपने रब पे डालते हैं, अल्लाह जी मैंने तो आपसे पूछा था, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन इसमें कोई ना कोई आगे जाके खैर निकलेगी, यही शख्स आपके नसीब में था। ये जो हम रोते हैं ना अपने हालात पे, अब मैं एक बड़ा कड़वा जुमला बोलने लगी, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये जो हम अपने हालात का रोना रोते हैं ना, ये हमें सजा मिलती है तकदीर पर ईमान ना लाने की। हम खुश नहीं, हम तकाबुल करते हैं, हाय उसको ये मिला मुझे ये मिला, और याद रखे तकदीर के ज़िम्मन में अल्लाह ने किसी पे जुल्म नहीं किया, किसी को अल्लाह ने अगर कुछ दिया है ना तो एक तरफ कमी की है तो दूसरे ज्यादती भी की है। आप पूरे ओवरऑल पूरे लोगों को जमा करेंगे ना, किसी की शक्ल बड़ी खूबसूरत होती है, आप कहते हैं हाय हाउ ब्लेस्ड शी इज़ है, लेकिन आप देखें उसका नसीब कैसा है, उसको चोट पड़ जाती है, कोई तकलीफ लग जाती है। हाँ, किसी के आप देखिए हस्बैंड उसका बहुत प्यार करते हैं, उसे बच्चे अच्छे नहीं निकलते, किसी के बच्चे बहुत ओबीडियंट है लेकिन सारी ज़िंदगी उस औरत ने शौहर की बेचारी ने डांटे ही सुनी होती है ना। आप अपने नसीब को देखें, आज के बाद कभी इधर देखें ना उधर देखें, ना बहन को देखें उसका नसीब कैसा है, खाला कैसा, फूफो कैसी। आप अपने दिल को इस पे यकीन रखें कि मैं जिस काबिल थी मुझे वही मिला, और द मैटर कैन बी वर्स, इससे भी तो ख़राब हो सकता था ना। आप कहते सर में दर्द है, सर में दर्द है, सर में दर्द है, सर में दर्द है, माइग्रेन है, कुछ अच्छा नहीं लगता, जो बैठा आप उसके साथ दुख सुख शुरू हो गए, ये कहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, सर का दर्द है, दिल का दर्द तो नहीं है। हमेशा अपने हालात को दूसरी तरफ लें, और आप देखेंगे तकदीर का एक सिरा जाके शुक्र और दूसरा सिरा जाके सब्र में मिलेगा। सब्र और शुक्र को नॉट लगा लें, करें क्या, हालात नहीं बदल सकते, आप खुद को बिजी कर लें। आपके हस्बैंड आपकी टेक केयर नहीं करते ना, छोड़ें, उसके नसीब में इतना था, अल्लाह ने उसको तौफीक ही नहीं दी कि वो आपका ख्याल रखे, आप खुद को बिजी कर लें। आप अपनी लाइबिलिटीज पूरी करें, आप जायज़ हदों में रहकर उसकी बात भी माने, अल्लाह को राज़ी करें, और आपको लगता है मेरे मुझे टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, तो आप अल्लाह की किताब को टाइम दे लें, आप कहीं वॉलंटियर कर लीजिए, आप कहीं बच्चों को पढ़ा लें, आप किसी का कुछ काम कर दें। ये जो रोग बना लेते हैं ना, हाय दूर हैं दूर हैं, कुछ लोगों का हाल है जिधर होते हैं उससे दूसरी जगह पहुंचे होते हैं। पाकिस्तान जाएंगे तो कहेंगे हाय कौन सा दिन हम कनाडा जाएं, पाकिस्तान वालों से ज़रा पूछिए तो सही, कनाडा अच्छा है कि पाकिस्तान अच्छा है? उनके लिए कनाडा जन्नत है, और आप यहाँ बैठ कर रोते हैं हाय 2 साल से पाकिस्तान नहीं गई, मिट्टी नहीं खाई, वहाँ की मक्खियाँ मेरे से उदास हो गई होंगी। जहाँ रहें खुश रहें, चांद पे चले जाएं, समंदरों की तहों में चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, एक बात याद रखे कि मेरे रब ने मेरे लिए जो लिखा है मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। देखिए कोई आपको गिफ्ट देता है ना, कभी भी आपकी माँ बहन कोई भी देता है, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको वो अच्छा लगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं, मेरी माँ ने दिए, मुझे सोचा उन्होंने, या मेरे शौहर लेकर आए हैं, आप ये नहीं देखते क्या लाया है, आप ये कहते हैं मेरे शौहर ने दिया है, राइट? तो जब तकदीर में कोई दुख और गम आता है ना, तो क्या सोचें, मेरे अल्लाह ने दिया है, इट्स फ्रॉम माई अल्लाह सुबहान तआला, तो आप देखेंगे कि आपको दुख भी अच्छे लगेंगे। जिसको तकदीर पर ईमान, मेरे पास 23 चीज़ें लिखी हुई हैं कि ईमान लाने के फ़ायदे, लेकिन अब मैं करूँगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, कि तकदीर पर ईमान लाने से क्या मिलता है, बस अभी इतना इस लेक्चर के एंड पे समझ लीजिए कि बंदे का दिल खुशियों से भर जाता है। मुझे तो कोई गम नहीं, मैं तो कसम खा के कह सकती हूँ कि जिंदगी में आज तक ना दुख देखा, ना गम देखा, ना तकलीफ देखी, ना बीमारी देखी, ना परेशानी देखी, कभी नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। क्यों? कि अगर कोई छोटे मोटे हालात में ऊंच नीच आई तो आई डिजर्व मोर, ये तो मेरे रब का फजल है कि उसने कम दिया, मैं तो इसे बहुत ज्यादा डिजर्व करती थी, मुझे पकड़े। ये अंदर तकब्बुर होता है, मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्यों, ये मैं है ना अंदर, अना ईगो। आप जब किसी तकलीफ के वक्त में परेशान होते हैं और खौलते हैं और जलते हैं और कुड़ते हैं तो आप तकब्बुर कर रहे हैं, मान लीजिए। ऊपर से आप मिस्कीन है, नाजुक बने जो भी, लेकिन अंदर आपको ये कि मेरे साथ तो ये नहीं होना चाहिए था। देखिए ना, कोई आए और आपको बाहर बिठा दे कि चले जी आप दरवाजे के पास ही सोफे पे बैठ जाए, तो आपको गुस्सा आएगा, आप कहेंगे मैं तो आई थी सोच के ये मुझे अंदर के बड़े खूबसूरत से ड्राइंग रूम में बिठाएंगी। अब आपको उस बाहर के सोफा जो लाउंज में पड़ा उस पर बैठना भी बुरा लगेगा, लेकिन आपकी मेड आती है सुबह, वो क्या सोच के आई है, बाजी ने आती कहना ये करो वो करो, हाँ आप कहते छोड़ो काम तो करेंगे, इधर आओ इधर बैठो चलो चाय पीते हैं। वही सोफा जिस पे आपकी वो दोस्त जो बहुत प्रोटोकॉल मांग रही थी उसको बैठना बेइज्जती लगा, उस मेड को वहां बैठना ऑनर क्यों लग रहा है? क्योंकि मेड को पता है कि मैं मेड हूँ और दोस्त को पता है कि मैं बहुत बड़ी हूँ। हम जब लोगों की नज़रों में बहुत बड़े हो जाते हैं ना तो हम बाज़ दफ़ा अल्लाह की नज़रों में भी बड़े बनते हैं। तो औकात अपनी देखनी हो तो मैं अक्सर यही मिसाल देती हूँ कि अगर मैंने अपने आप को देखना है ना कि मैंने अल्लाह को आज तक क्या दिया, आज मैं नहीं रहूँगी तो अल्लाह का क्या बिगड़ेगा, और मेरी क्या औकात है, दिन में कम से कम 2 बार तो हो गए और इससे ज़्यादा जितना बढ़ा ले, वॉशरूम में जाकर हर इंसान अपनी गंदगी साफ़ करता, जो जिस्म से एक हवा निकलती है उसकी स्मेल देख लें, और टॉयलेट में जो गंदगी उसको देख कर सोचें कि हम क्या है, हमारे अपने अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है कि उसको हम बाहर खुद नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये जो अल्लाह ने दिया ना ये मेरा हक नहीं है, सच बताइए जो खा के बैठे हैं क्या वो हक था, जो पहना हुआ है वो मेरा हक था, जिन गाड़ियों पे हम बैठ के आते जाते, जो हमारे घर हैं, जो नेमते हैं, बाहर देखिए माइनस टेम्परेचर, अंदर आपको गर्मी लग रही है, क्या मैं और आप डिजर्व करते थे? वो भी तो लोग हैं ना जो होमलेस है, जो रोड्स पे बैठे हुए और सर्दी से मर जाते हैं, वजह क्या है, मेरे में क्या खूबी है? कई हमसे लाखों दर्जे ज्यादा खूबसूरत लोग होंगे सड़कों पर रुल रहे हैं। कितने दीन को जानने वाले, अल्लाह से डरने वाले बंदे देखिए उनकी जिंदगी कितनी कसम पुरसी में होगी। हम बहुत बड़े बने हुए, हमारे पास बहुत है, टाइम ही नहीं अल्लाह के लिए, वक्त ही नहीं है। हाँ अगर मैंने और आपने अपनी तकदीर खूबसूरत करनी है, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही ना एंड पे, ये कब मिलती हैं, जब अल्लाह की किताब समझ आती है। एक दफ़ा इसके साथ ताल्लुक़ जोड़ के देखें, सब्र, खुशी, सुकून, कंटेंटमेंट और पीस आता ही तब है जब आप अल्लाह की किताब को समझते हैं। वरना तो हमारा हाल ये है कि हम तो अल्लाह की किताब को इस तरह समझते हैं जैसे किसी ने चाय का कप ऑफर किया, हम कहते हैं नो फाइन आई डोंट नीड दिस। वरना ये कैसे हो सकते एक बंदा अपने आप को इतना सा छोटा समझे और फिर अल्लाह की बात उसके सामने आए तो उठे ना, हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह की 5 दफ़ा अजान आती है ना और हम उठ के नमाज के लिए नहीं जाते, ये अकड़ है, हमारे अंदर तकब्बुर है, हम अल्लाह से बड़े समझते हैं, हमें नींद प्यारी। एक मेहमान आ जाए, जो मर्जी हो जाए, हमने कभी कोई नमाज ना छोड़ी हो, मेहमान की खातिर में नमाज चली जाती है, सारे दिन की जमा की हुई नमाजें रात को आके पढ़ते हैं, ये तकब्बुर है। एक दफ़ा अगर अल्लाह का मुझे यकीन हो जाए फिर देखिए ज़रा मेरी ज़िंदगी में क्या चेंज आती है। तो बहरहाल बातें काफ़ी हो गई, ज़रा इसको इंग्लिश में थोड़ा कीजिए।
Can we change our fate? A child is born, Allah has already written, he will die at the age of 40. Now, his wife made dua for him, he doesn't die, he lives 20 more years. Does that mean it will not match in the Lauhe Mehfooz? No, it will match because it is already written that way, that she, his wife will make dua and he will live 20 more years. A person makes dua to change my fate. Allah does. Allah has all the power to change whatever He wants. Things that can change a fate is number one, dua, and number two is keeping kinship. A woman who never forget her relatives once she became well off, she still stayed in touch with her poor relatives. She got sick many times, but she still came back. She reached her last stage many times, but she still bounced back because of the du'as of her relatives. A woman was very sick, since her childhood. Doctor told her that something's wrong with her intestines. She is 65 now. Doctor told her that she did have to remove something, but she said, you know, let's wait till after Ramadan. Why? Because her iman was so strong and she knew that nothing's going to happen. She is a generous woman. Few days before her surgery, she saw a dream that nothing is wrong. Doctors were surprised when they did perform the surgery. The same woman had mass growth in her breast too. One day she ate some other alternative medicine and the mass came out in her hand without any operation. Why? Because she has devoted herself to help others. She has a great iman. If we are pleased with Allah subhanahu wa ta'ala in any case, this is iman. Things to do. Number one, be happy with what you have because whatever happens, it's Allah's will. Number two, if you're unhappy with your husband, first see that you already taken all the measures, like you married the right person according to Sunnah and everything. Then know that this is the way it's supposed to be. Know your own fate. Know this is what I deserve. Allah always sees positive side. Never focus on negativity. If your husband doesn't give you time, you find other activity. Busy yourself with Quran. Be happy wherever you live. No, Allah has planned it for you this way. If you have iman in your faith, it will make you happy and content. My Rabb gave me this. He loves me. I'm happy the way it is. Take me, myself, and I from yourself. What my Allah has given me, do I deserve that? And what I have given to Allah subhanahu wa ta'ala. What is so special about me? Why do I have what I have? Once you connect yourself to Allah's book, peace, contentment will come to you. When Azan comes and people don't get up, this is takabbur. This is arrogance. This is thinking of yourself bigger than Allah. So when next time, know that Allah has planned things for you the way that it's supposed to be.
جی جزاک اللہ خیر. کوئی ایسا سوال جو آپ کو جواب نہ ملا ہو اور آپ سوچ کے آئے تھے کہ اس ٹاپک پہ بات ہوگی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی آپ سسٹر. جی دیکھیے کہ آپ کی جو بات مجھے لگا کہ آپ کا کنفیوژن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے پھر میں کیسے اپنی تقدیر بدلتی ہوں, اور اگر تقدیر میری وجہ سے بدل جاتی ہے تو پھر اس کا اندر کہ کیا میں نے اللہ کے لکھے کو بدل دیا. یہ کوشچن ہے آپ کا. دیکھیے اس میں سمپل سی بات ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ بیک پورشن اللہ کا اور ہاف تھوڑا ہمارا ہے. آپ کہتے ہیں نا 50-50 اور ایک ہوتا ہے 51-49. بہت محتاط بات کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں 51 اللہ کا ہے, 49 ہمارا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان جس جگہ کے لیے پیدا کیا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتے ہیں. مثلا صبح اٹھ کے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ کی پوری چوائس ہے کہ آپ مسجد کی طرف جائیں یا آپ سینما کی طرف جائیں. اس وقت تمہیں کوئی نہیں روکتا نا, رائٹ. چوائس ہماری اپنی ہے. اچھا کام ہم کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں, ہم پوری 100% اپنی چوائس کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے انکلائنیشن, ہمارے میلان کو دیکھ چکے ہوتے ہیں پہلے, لیکن ہمیں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ مجبور نہیں کیا ہوتا. اب رہ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ لکھا تھا تو پھر میں اس کو بدلوں گی کیسے. میں نہ کہتی تو مجھے نہیں ملنا تھا. ایسے ہی ہے, میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دیتی ہوں, شاید بات واضح ہو جائے. کہ آپ کا بچہ, آپ کہتے ہیں کہ اس بچے کو آج میں روٹی اور سبزی ہی کھلاؤں گی, ٹھیک ہے, لیکن دل میں آپ کے ڈاؤٹ ہے کہ یہ شاید تھوڑی ضد کرے گا, ہاں. تو آپ تھوڑا سا اس کی پسند کا میٹ بنا کے یا کباب یا واٹ ایور جو بچے کھاتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں لیٹ سی ٹرائی وتھ دس, آؤ بچوں آج ہم سبزی روٹی کھائیں گے. اچھا آپ نے کیا سوچا تھا کہ سبزی روٹی کھائے گا. اب کیا ہوا کہ پہلی صورت ہے کہ بچہ کہتا ہے چلو امی نے سبزی روٹی کہی تو میں آج کھا لیتا ہوں. ہی نیور آسٹ اباؤٹ دا کباب یا چکن. اب آپ نے اس کو نہیں دیا نا. لیکن اگر بچہ ضد کرے, کہتا ہے کہ مجھے تو کھانا ہے, تو پھر آپ دے دیں گی نا. آپ کا پلان تھا اس کو کباب دینے کا, لیکن آپ نے ٹرائی کی کہ اگر یہ نہیں مانگے گا تو میں نہیں دوں گی. سیم تھنگ, اللہ سبحان تعالیٰ نے ایک لیسٹ منیمم ہمارے لیے فٹ کر کے رکھ دیا, ٹھیک ہے. جب ہم دعا کرتے تو ہمیں دعاؤں کے ساتھ اللہ وہ سب دے دیتا ہے جو اللہ نے دینا ہوتا ہے. ماں تو پھر بھی بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے, बच्चे जिद कर देते हैं या वट एवर, या इमोशनल होती है, अल्लाह ताला इमोशनल नहीं होता। ये पूछें कि मुझे आपको करना क्या है, ट्राई योर बेस्ट टू एक्सेप्ट द जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, और दुआ करते रहें। अल्लाह के नबी ने जब कह दिया कि अपने दुआ मांगो, हमें दुआ करनी है। अभी ये टॉपिक हमारा पूरा नहीं हुआ, इस पर बहुत कुछ अभी शेयर करने के। दुआएँ ऐसी बहुत सारी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहतिल बलाई व दरक शिकाई व सुइल कदाई व शमातिल अदाई, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ कि मैं बदबخت हूँ और मेरे हाल पे मेरे दुश्मन हंसें, सुइल कदाई शमातिल अदाई यानी बुरे फैसले मेरे हक में ना। आप दुआएँ मांगें, ट्राई योर बेस्ट, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए दुआ कीजिए। आपकी दुआ कबूल हो गई तो ये भी अल्लाह के हुक्म से होगी, लेकिन आप दुआ नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बात वाज़े, यानी आप नहीं मांगेंगे कुछ चीज़ें अल्लाह से तो अल्लाह नहीं देगा, लेकिन अल्लाह कहता है अगर ये मांगेंगे तो मैं इनको दे दूंगा। तो वी नीड टू आस्क, अपने हालात के लिए मांगिए, सब्र आप जो करते हैं ना आखिरत के लिए उसका अजर मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला से ये ज़रूर कहिए कि अल्लाह ताला अगर मेरे किस्मत में कोई बुराई है, ख़राबी है, तो उसको दूर कर दे। इस तरह की बहुत सारी दुआएं जो बुरे फैसलों से, बुरी तकदीर से बचाती हैं, और हम अल्लाह से लाड कर सकते हैं। आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला हमें बुरे हाल में नहीं देखना चाहते, हमें खुश देखना चाहते हैं, हमें राज़ी देखना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला सम टाइम दुनिया में जो हमें किसी तकलीफ़ में डालते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है। मिसाल दे देती हूँ, जैसे एक माँ ख़ुद अपने न्यू बॉर्न बेबी को जाकर इंजेक्शन लगवाती है। अब अगर उस बच्चे को थोड़ी सी भी समझ हो ना, तो वो कहेगा ये माँ मेरी दुश्मन है। लेकिन माँ वो इंजेक्शन क्यों लगवाती है? माँ को पता है ना कि ये एक इंजेक्शन इसको बाद में हो सकता है कई कड़वी दवाइयाँ खाने से बचा लेगा। सेम टाइम पे अल्लाह सुब्हान तआला हमें दुख देता है। तो बेसिकली ये कि जब हमारे साथ कुछ भी ना, तो जस्ट अपना असेसमेंट करें, मुहासबा करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी और के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। और याद रखें अल्लाह ताला ने हर बंदे की नसीब फ़र्क बनाया ना। अगर किसी चीज़ में आपको थोड़ी सी इस दुनिया में कमी लग भी गई, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको वहाँ मिलेगा। एक दो ऑनलाइन पर क्वेश्चन हैं, इनकी जवाब देते हैं। ये कहती है कि सूरत कदर में फ़रिश्तों और रूह के उतरने का हुक्म है, तो ज़रा उसको भी बताएँ। तो देखिए, जो इन्ना अनज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। वो लैलतुल क़द्र जो है ना, वो तकदीर की रात किस तरह, इसको ये इसकी तफसीर आप सुन लें तो बात ज़्यादा समझ आएगी कि फ़रिश्ते हर हुक्म के लिए उस रात उतरते हैं। आपके मेरे पूरे साल की जो प्लानिंग होती है ना, वो लैलतुल क़द्र में होती है। ये हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है इंडिया पाकिस्तान में कि ये 15 शाबान को शब बारात को होती है। बचपन में दरख्तों के पत्ते ही देखते रहते थे, पता नहीं मेरा पत्ता गिर तो नहीं गया, अम्मी अब्बू के पत्ते लगे रहे, छोटे छोटे दिल थे, छोटे छोटे हाथ थे, यही रात को दुआएं मांगते थे शब रात में कि आज अब्बू का पत्ता ना उतर जाए, अम्मी का ना उतर जाए। कुरान पढ़ा तो पता चला कि ये पत्ते लगने और झड़ने ये लैलतुल कद्र में होता है। हर साल आखिरी 10 रातों में से कोई एक रात होती है, ठीक है? तो वो लैलतुल कद्र इसलिए भी है, 3 वजूहात है। एक तो ये कि तकदीर के फैसले होते हैं, दूसरा कदर का लफ्जी माना होता है तंगी, दूसरा इतने ज़्यादा फरिश्ते उतरते हैं के तंग होने लगती है जगह, ठीक है? तो उसका इधर इससे मामला नहीं। तो 15 शाबान से तकदीर का ताल्लुक नहीं है। फिर याद रखें हमारे डिफरेंट दफ्तर हैं, जैसे आप में से किसी के हस्बैंड अगर बिजनेस करते हैं तो उनको शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। आप क्या होता है डेली सेल, सम टाइम क्या होता है कुछ लोग अपनी डेली सेल जो है वो रोज़ के रोज़ जाके बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। सम टाइम कुछ हिसाब या अकाउंट्स का हिसाब ऐसा होता है वो वीकली बेस्ड करते हैं। लेकिन ये एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, जिस दिन अगले दिन टैक्स लगना होता है और वो रिटर्न्स जो जाती हैं वो वंस अ ईयर जाती है ना, सेम मेरे और आप। बड़ी ख़तरनाक बात जो है बताने लगी हो, हम रोज़ सुबह शाम जो काम करते हैं ना, 2 दफ़ा दिन में हमारे अल्लाह के पास जा रहे हैं, सुबह फजर और असर के वक्त। फिर सेकेंड टर्म में एक और बंडल हमारा जाता है, वो एवरी थर्सडे और एवरी मंडे। नबी सल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमेरात को इंसानों के अमल अल्लाह के पास जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस वक्त मेरा नाम है माल अल्लाह ताला के सामने जाए, हो सकता है उस दिन अल्लाह को प्रेजेंट किए जाते हों। देखिए जो बड़े होते हैं ऑफिसर या बॉस है, उनको हर वक्त तो नहीं छोटी छोटी बातें देते, उनको आप एंड पे एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। लेकिन जो इंचार्जेस होते हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनको हर दिन की बात पता होती है। तो पीर और जुमेरात को अल्लाह ताला को प्रेजेंट किए जाते हैं। तो आपने क्या फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि उस वक्त मैं रोज़े से हूँ और अल्लाह को मेरे ऊपर रहम आ जाए, ठीक है? फिर इसी तरह से एक एनुअल रिपोर्ट जाती है हमारी, वो लैलतुल कदर में जाती है। तो उस दिन ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब ये बताइए कि इस साल हमारे लिए अल्लाह ने क्या लिखा हुआ है। हम में से कितने लोगों ने अभी तक अल्लाह की किताब नहीं सीखी? आप इधर से उठकर अब जो भी पहला फ़ैसला लें ना, वो ये लें कि मैंने किस तरीके से क्या मीन यूज़ करके जल्द अज़ जल्द इस कुरान को सीखना है। ये जो मैंने जितनी भी आपको बातें थोड़ी सी बताई ना, ये सारी कुरान से बताई है या हदीस से। मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता है कि अल्लाह के कुरान में ये बातें वो मैंने आपसे शेयर कर दी। ये सब बातें आपको भी पता लग सकती हैं, कोई दीन पे किसी की मनापली नहीं है, लेकिन ये आपका मेरा हक बनता है कि हम कुरान को समझें। हम इस कुरान को ना समझ कर अपनी ज़िंदगी को जीरन करते हैं। आप भी यही कहेंगे मुझे कोई दुख नहीं, अल्लाह ने जो मेरे साथ किया दी बेस्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कॉन्टेंट है, जो मेरा नहीं था वो मुझे मिलना ही नहीं था। हसरत क्या होती है? हाय वो मिल जाता, हाय अगर जल्दी पहुंच जाते तो ये होता, वहाँ जाते तो ये करते। नहीं था आपके नसीब में कॉन्टेंट। तो जजाक अल्लाह खैर, छोटी सी दुआ कर लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा, और जो कुछ भी हमने कहा उसमें सही बात को कबूल फरमा, हमारी गलतियों की इसलाह फरमा, और आइंदा के लिए हमसे राज़ी हो जा। जो भी साथी इन सब के दिलों की ख्वाहिशात पूरी फरमा, जो भी बीमार है उनको सेहत और आफ़ियत दे, और जो भी किसी मुश्किल में उसको उस मुश्किल से निकाल दे। हमारी इस बहन की इस कोशिश को कबूल फरमा, इनके घर में खैर और बरकत दे। हम सब के घरों से अल्लाह के दीन की आवाज़ें आएँ, और हम सब को अपनी ज़िंदगी में ही ऐसे बीज डालने की तौफीक दे कि जो बात में दरख्त बने और हमारी कब्रों पे साया हो। और या अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, हमें कुरान और सुन्नत को फैलाने वालों में शामिल कर ले। कल क़्यामत के दिन हम उन लोगों में ना हों कि जिन्होंने आज के दौर में दीन को बदला या दीन को छोड़ा। और या अल्लाह जिसने जहाँ कभी दुआओं के लिए कहा उनकी दुआएँ कबूल फरमा। हमारे माँ बाप, उस्तादों, दीनी साथियों, हमारे शोहरों, हमारे बच्चे और जो भी हमारे घर वाले, ख़ानदान वाले, या अल्लाह उन सब पे अपनी रहमत फरमा। जो भी जिस नेमत से दूर है, या अल्लाह उसको वो नेमत अता फरमा, और हम सब को हमारी तकदीरों पे राज़ी कर दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।